نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اگلا باب ہے سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت. مکانت رائی لدی السنتی. رائے کیا ہوتی ہے؟ کسی کی رائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بھئی آپ کی رائے کیا ہوتی ہے؟ کوئی آپ مجھ سے پوچھ لے، اچھا آپ کی کیا رائے ہے پردے کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو یعنی اسکارف پہننا چاہیے کہ اس کو دوپٹہ لینا چاہیے؟ اس کو رائے کہتے ہیں. یعنی صحیح حکم دین کا کوئی مسئلہ بیان کر دیا جائے اور اس کے باوجود اس کے بارے میں مین میخ کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس میں اب آپ کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، تو اس کو رائے کہتے ہیں. اس پہ آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ساری اکٹھی پڑھ کے پھر اس کی دلیل دیکھیں گے. پہلی بات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا. دوسری بات، سنت پر عمل کرنے کی بجائے اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو رسول اللہ نے نافرمان قرار دیا. صحابہ کرام فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول کی طرف رجوع فرماتے تھے. سنت رسول کا علم ہوتے ہی صحابہ کرام اپنی رائے واپس لے لیتے تھے. اتباع سنت ہی مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کا راستہ ہے. اب ان سب کی دلیل میں چند روایات ہیں. پہلی روایت ہے حضرت قبیصہ بن زویب رضی اللہ عنہ سے. ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میراث مانگنے آئی. یعنی کسی کے نواسے کا انتقال ہوا یا نواسی ہوگی یا نواسا، نانی جو تھی وہ ورثے میں سے حصہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا، قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، لہٰذا واپس چلی جاؤ. میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا، یعنی صاحب علم لوگوں سے پوچھوں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا، میری موجودگی میں رسول اللہ نے نانی کو چھٹا حصہ دلوایا ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا، کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری نے بھی اس حدیث کی تائید کی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے نانی کو چھٹا حصہ دلا دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام جو امتیوں میں ہے نا، وہ ابو بکر صدیق ہے. خلیفہ بھی تھے، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی تھے، آپ کا ساتھ دینے والے بھی تھے، اس کے باوجود خود فیصلہ نہیں کیا. اچھا میں کچھ خود ہی اٹکل کر لوں، کیونکہ سورۃ النساء میں جہاں وراثت کی باتیں ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین، اس کے آگے ماں باپ کے حصے ہیں، بیوی شوہر کا حصہ ہے، بھائی بہنوں کا جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، نانی کے حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا، عام صحابہ کرام کے پاس گئے اور یہ وہ دو ان نون صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ نہیں بھی جانتے، انہوں نے گواہی دی کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا. تو ابو بکر کی رائے کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حدیث کی اہمیت بڑھ گئی نا، چاہے وہ ایک صحابی نے کہی. تو یہ ہے مقام. آج کتنے ظلم کی بات ہے کہ بڑی بڑی حدیثیں صرف یہ کہہ کے جھٹلا دی جاتی ہیں کہ جو بھی کہہ لیں حدیث ہوگی ہوگی، لیکن ہمارے امام کا یہ فتویٰ، ہمارے مولوی صاحب کا یہ حکم ہے. ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مولوی تھا؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی امام تھا؟ تو لہٰذا ایک بات اس نے ہم نے دیکھی کہ جب حدیث مل جائے پھر اس کے بعد کسی اور کی رائے نہیں، پھر ابو بکر نہیں بولے نہیں میری رائے میں تو ایسا ہے کہ نانی کو تو نہیں ملنا چاہیے، میری خیال میں تو نانی تو بوڑھی ہو گئی ہے، وہ تو فوت ہونے والی ہے، اب اس نے مال لے کے کیا کرنا ہے. جب عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں نا دینی کے معاملات میں، تو اس سے دین بہت زیادہ پھر بکھر جاتا ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں الگ بات پتہ چلے گی. حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، دیت صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے ہے، لہٰذا بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے کچھ حصہ نہیں ملتا. دحاق بن سفیان نے حضرت عمر سے کہا، رسول اللہ نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھجوایا कि मैं अशीम जबाबी की बीवी को इसके शौहर की दियत से हिस्सा दिलाऊं। चुनाचे हजरत उमर ने अपनी राय से रुजू कर लिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। चलिए अब अबू बकर सिद्दीक के बाद अब हजरत उमर का भी काम देख लीजिए। दियत कहते हैं ब्लड मनी को। कोई मर जाता है तो उसके रिश्तेदारों को 100 ऊंटों की कीमत के बराबर ब्लड मनी जो है वो मकतूल की तरफ से दिलाई जाती है। इसको दियत या ब्लड मनी आज के दौर में कहते हैं। खून बहा भी इसी को ही कहते हैं जी। तो अब ये हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तक ये मसला नहीं पहुंचा हुआ था कि ये क्या किया जाए। जब उनसे लोगों ने पूछा तो कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तो जब एक और सहाबी ने उसकी दलील दे दी तो कहा कि ठीक है। अब यहाँ रुक के देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात कही और वो बात वो थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ थी। खिलाफ इस रंग में थी कि अबू बकर सिद्दीक को इल्म नहीं पहुंचा हुआ था। ठीक है ना, जरा गौर से सुनिएगा जो जुमला बोलना चाहूंगी। क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक इस हदीस को नामालूम होना हजरत उमर के मुकाम को छोटा कर गया? कैसे ये नहीं पता चला कि उमर जो हर वक्त ऑलमोस्ट अल्लाह के नबी के साथ रहते थे, उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि हर हदीस याद रखते। ये बात मैंने क्यों जोर देके की? लोग जब आइमा कराम के बारे में बात करते हैं और कोई ऐसी हदीस बयान कर दी जाए कि अल्लाह के नबी की तो ये हदीस थी, हालांकि फलां इमाम का फतवा उसके ऑपोजिट है, तो लोग आगे से सवाल क्या करते हैं? कुछ मिलता जुलता सवाल कल आपने भी किया था, थोड़ा फ़र्क था, लेकिन इस मसले पे अमूमन लोग क्या कहते हैं? ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात और इमाम साहब को ना पहुंची हो? सुने आपने ये जुमला कभी? इमाम साहब तक ये हदीस नहीं पहुंची, दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? ये तो सिर्फ एक मौका है ना। एक पूरा मैंने एक दफ़ा एक दर्स किया था, उसमें 7-8 डिफरेंट वाक्यात कोट किए थे कि जिसमें उमर जैसे शख्स को जो इतने जर्री, इतने बहादुर और इल्म का इतना शौक रखने वाले थे कि इन्होंने अपने दिन की बारी लगाई हुई थी, अपने नेबर जो पड़ोसी था उसके से बारी लेते थे, दिन में ये काम पे जाते और इनका हमसाया था जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठता और इल्म सीखता। कोई हदीस आती, कोई वही आती तो वो नोट करता। फिर शाम को ये दोनों मिलते, वो दिन की बातें शेयर करते और फिर बाद में उमर फारूक आते और वो जो इनका साथी था वो काम पे जाता। यानी इन्होंने बारियां लगाई हुई थी कि कोई बात छूटे ना। और एक मौके पर ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मसला बयान किया। एक ऐसा वक्त आया, और वो भी इसी चैप्टर में गालिबन हदीस आगे इसमें नहीं आएगी, लेकिन उससे भी पता चल सहाबी थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बारे में कितने ज़्यादा सेंसिटिव थे। अपने लफ्ज़ों में सुना देती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ देख रही हूँ कि मुझे शुभा पड़ रहा है कि वो अगर हदीस आगे आ रही है तो फिर वहीं पर जाके बात करेंगे। लेकिन यकीन करें कि सहाबा कराम की नज़रों में इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कह दी है या कुरान में कोई बात आ गई है तो हम उसके खिलाफ ना करें। खुलासा बता देती हूँ उस बात का कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में देखा कि लोगों ने बड़े बड़े हक मेहर बांधने जो है वो एक स्टेटस का सिंबल बना लिया है कि वाई कितना है, यानी ऐसी शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी रकमें हक मेहर की बांधने लगे हैं। आज हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, जो मर्ज़ी बांध लो, देना किसने? कोई मांगेगा तो कहेंगे अच्छा तलाक लेनी है तुमने। और आज के दौर में हक मेहर का मांगना तलाक के मांगने के मिसल समझा जाता है। हज़रत उमर ने इस का मसले से निपटने के लिए एक ऐलान कर दिया मिंबर पे आके कि आज के बाद कोई मर्द अपनी बीवी का हक में 400 दिरहम से ज़्यादा ना बांधे, इससे ज़्यादा बांधेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अब उमर ये हुक्म सुना के मिंबर से नीचे उतरे हैं और उसी महफिल में एक आम औरत, एक आम खातून बैठी हुई, वो कहती हैं उमर आपने ये हुक्म कैसे दे दिया कि आपने कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें तलाक के बाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बीवियों को एक ख़जाना किनदार भी दिया हो तो तलाक की सूरत में वापस नहीं ले सकते। अल्लाह ने वापस लेने से तो मना किया है लेकिन बीवी को ख़जाना देने से तो मना नहीं किया, और 400 दिरहम का तो इतलाक ख़जाने पे नहीं होता। उमर को बात समझ आ गई, दोबारा मिंबर से जाया, ये नहीं कि कब चुप कर जाओ मेरी इज्जत का मसला, तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरे आगे बोलने की, वहाँ ऐसे मार्शल लॉज नहीं थे। वापस मिंबर से जाया, फिर लोगों को जमा किया, कहा कि अभी उमर ने एक मसला बताया था और अब मैं अपने उसी मसले से वापस पलटता हूँ जिसको जितना हक मेहर बांधना बांधो। और कहते हैं कि औरत उस हुक्म को पा गई जिसको उमर भूल गया। एक रिवायत में आता है कहते हैं सारे ही लोग उमर से ज़्यादा फकीह हैं। एक रिवायत में आता है, एक मौके पे कहते हैं कि उमर तुझे बाजारों के लेन देन ने इल्म से दूर रख दिया। अपने ऊपर हसरत करते थे, अफसोस करते थे कि तुम्हारी दूसरी मसरूफियात जो हैं उन्होंने तुम्हें दीन से दूर कर दिया, इल्म नहीं सीख सके। और आज उम्मत का हाल देखे कि जिनके पास वक्त ही नहीं है सीखने को, क्यों कि हम कमा रहे हैं, औरतें घर से जा रही हैं और मर्द कमा रहे हैं, इसलिए इल्म सीखे कोई और किसी और का ये काम होगा, ये हमारा तो है नहीं। उस दावत को अपने लिए समझते ही नहीं है, ऐसे लगता है कि ये तो किसी और के लिए दावत है। तो लिहाजा सहाबे कराम की ये शान थी कि जब कोई बात कह देते, ज्यों ही उसके बारे में कोई बात पता चलती, मान जाते। अब क्या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कम इल्म थे? एक मसला ये हमने सुन लिया, उनको दियत का नहीं पता था। दूसरा मसला हमने सुन लिया, हक महर का वो भूल गए, वो तो कुरान की आयत थी। तीसरा मसला, एक मौके पे यानी एक शहर था तो उसमें ताउन की वबा फैली हुई थी, वहाँ फौजों के जाने का मामला था। हजरत उमर ने कहा फिर भी जाएंगी फौजें, तो एक साहबी थे अब्दुलरहमान बिन औफ थे गालिबन, हजरत उमर नहीं जाएंगी फौजें, क्यों? कि अल्लाह के नबी को मैंने ये बात फरमाते हुए सुना कि जब किसी शहर में वबा फैल जाए, कोई डिजीज़ कोई मुजी मर्ज हो, तो फिर वहाँ वाले बाहर ना निकलें और बाहर वाले वहाँ ना जाएं। कहा तुम कैसे कहते हो, मैंने तो ये हदीस कभी नहीं सुनी। कहा अच्छा यहीं रुको, जाओ वापस मदीना से किसी शख्स की गवाही लेके आओ कि किसी और ने भी तुम्हारे सिवा ये बात सुनी है। फौजें वहीं रुकी रही, मुल्क शाम में नहीं दाखिल हुए। एक शख्स गया, कितना दूर है मदीना, ये ऐसा नहीं था कि आज सुबह जहाज में बैठे और 1 घंटे में होके आ गए, ये ऊँटों और घोड़ों का सफर था। लेकिन इंतजार किया और जब वहां जाके औरों ने कहा ये हदीस तो हमने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, अच्छा चलो फिर वापस चलते हैं, चलो फौजें अब आप दाखिल नहीं होंगी, वापस मदीना में जाएंगी। मान गए, कोई अना का मसला नहीं। देखिए अना उसकी होती है जो अपनी ज़ात को नुमाया करना चाहता है, और जिसको अपनी ज़ात की परवाह नहीं, वो तो ये जान पे बन जाएगी कि मैं क्यों लोगों की अपनी मुसीबत अपने जान पे लूँ, मैं लोगों के नज़रों में बड़ा बन जाऊँ और मैं अल्लाह की निगाहों से मेरा मुकाम हट जाए। वापस आ गए, कोई उसमें बुरा नहीं माना। अब देखिए कि उम्र फारूक को इतनी बातें नहीं पता थी, या भूल गए, या उन तक बात नहीं पहुंची, तो इससे उनकी कोई शान नहीं घटी। इसी तरह आज भी किसी इमाम की, किसी मुफ्ती की, किसी आलम दीन की कोई शान नहीं घटती इस बात से कि उसको कोई बात नहीं पता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दफ़ा एक शख्स दूर से आया, बड़ी शोहरत सुनी उनकी कि बड़े इल्म वाले हैं, बड़े मतलब दीन के साथ ताल्लुक है। 40 सवाल पूछे इमाम जो हैं, उसमें से कहते हैं कि शायद 10 के जवाब दिए और 30 सवालों के जवाब पे कह रहे हैं लादरी लादरी लादरी, आई डोंट नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आज हम कहते कहते कितनी बेइज्जती की बात है, ना भी आता ना तो बात गोलमोल करके बता देंगे कि क्यों पीछे रहें, चलो जी बता दिए, भी नहीं आता, ख़त्म। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कोई मुझसे कोई सवाल पूछे और मुझे ना आता हो ना वो, तो मेरी सांस में सांस आती है कि मैं कह दूंगा मुझे नहीं आता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। आज तो बच्चा बच्चा मुफ्ती बना हुआ है, औरत औरत मुफ्ती बनी हुई है, जिसको अपना नाम भी सही नहीं लेना आता होगा वो फतवे दे रही हैं। पूछता सवाल कोई किसी से है और महफिल से जवाब 2-4 तरफ से आता नहीं, ऐसा है मैंने उससे सुना है, मैंने उससे सुना है, कैसी जुर्रत है? और ये जुर्रत तब आती है जब बंदे के अंदर अल्लाह की खशियत नहीं, अल्लाह की बड़ाई नहीं, और अल्लाह की बड़ाई आती है इल्म के साथ। सूरत फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं, तो अल्लाह ताला हमें खशियत वाले इल्म दें। ऐसा इल्म न दे कि हम लोगों से बहसें करें और झगड़े करें और बड़े बने और तकबर आए, बल्कि हम नरमी के साथ और अपने मुहासबे वाला इल्म हासिल करें कि जिससे हम अपने अमल को बेहतर कर सकें। अगला मसला, हज़रत मिसवर बिन मखज़मा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने पेट के बच्चे की दियत के बारे में लोगों से मशवरा किया, तो हज़रत मगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा रसूलुल्लाह ने इस पर एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करने का हुक्म दिया। हज़रत उमर ने फरमाया अपनी बात पर गवाह लाओ। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलिमा ने इस बात की तस्दीक की। इसके बाद हज़रत उमर ने सुन्नत रसूल के मुताबिक फ़ैसला फरमा दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यहाँ भी वही बात है कि दलील मांगी, गवाह पेश करो, कोई हदीस ऐसे नहीं ले लेते थे, उसके लिए इख्तमाम करते थे और दो दो नफिल पढ़ा करते थे। बाज़ दफ़ा इल्म के लिए इन्होंने बड़े लंबे सफ़र किए, ये एक अलग सफ़र है, इसको भी कभी इंशाल्लाह शेयर करेंगे मौका मिला, कि किस तरीके से ये हदीसें हम तक पहुँची हैं। ये कोई खेल नहीं है कि जी सही हदीस नहीं है, पता नहीं ये गलत है, पता नहीं किसी ने अपनी तरफ से लगा दी है, ऐसा नहीं है। आज आपकी चीज़ें जो घरों में आती हैं, आप देखिए एक एक इंग्रेडिएंट और उसकी उन्होंने कितनी मिकदार है, क्या कुछ है, वो लिखा होता है। तो वो इतनी इन चीज़ों में कर सकते हैं जिसका ताल्लुक पेट के खाने से है, तो वो इल्म जो लोगों की रूहानियत के लिए था या रूह की गजा थी, उसको अल्लाह ताला कैसे प्ल्यूटेड रख सकते थे। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को अपने दिल में जगह ना दिया करें कि हदीस शायद इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, कुरान इतना अहम है। और कहा जाता है लो देखो इतने बात तो लिखी गई और पता नहीं वो ठीक थी कि नहीं थी, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मुगालते हैं और हमारी इल्म से दूरी की बात है। अगली रिवायत है, हज़रत बजाला रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं अहनफ के चचा जुस बिन मुआविया का मुंशी था। हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ख़त इनकी वफ़ात से 1 साल कबल मिला, जिस मजूसी ने अपनी महरम औरत से निकाह किया हो इन्हें अलग कर दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मजूसियों से जिज़िया नहीं लेते थे, लेकिन जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजूसियों से जिज़िया लिया करते थे, तो हज़रत उमर ने भी जिज़िया लेना शुरू कर दिया। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। मजूसी होते हैं आग की पूजा करने वाले, फायर वर्शिपर्स, तो उनसे जिज़िया क्या लेना होता है, यानी जब भी कोई मुस्लिम मुल्क हो और उसमें कोई मिनोरिटीज़ में रहे, यानी अकलियत की सूरत में किसी दूसरे मज़हब वाला रहे, तो फिर उससे जिज़िया लिया जाता है ताकि उसकी जान की माल की हिफाजत रखी जाए। जैसे मुसलमानों का ज़कात का माल जो है वो हुकूमत के पास जाता है तो शहर के फलाह बहबूद होती है, तो अब ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम से ज़कात तो नहीं ली जाएगी, तो उनसे जिज़िया लिया जाएगा। इसी को आज के दौर में टैक्स की सूरत में लोग देखते हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं नॉन मुस्लिम मुल्कों में और इवन अपने मुल्कों में भी, अगर इस्लाम का निज़ाम आ जाए तो इन टैक्सों की ज़रूरत ही नहीं होगी। आज भी देखिए जिन मुल्कों में इस्लाम की कुछ एप्लीकेशन मौजूद है वहाँ किसी किस्म का टैक्स नहीं है, क्योंकि जब लोग अपने माल की ज़कात दे देते हैं उसी से इतना माल जमा हो जाता है कि फिर उसके एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं रहती। अगला मसला है, हज़रत ज़ैनब बिनते काब बिन उजरा से रिवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु अन्हो की बहन फरिया बिनते मालिक बिन सनान रदी अल्लाहु अन्हा ने इन्हें बताया कि वह रसूलुल्लाह के पास आईं और पूछा, क्या वो बनी खिदरा में अपने घर जा सकती हैं, क्योंकि मेरे खामन के चंद ग़ुलाम भाग गए थे, वो इन्हें ढूंढने निकले। जब तरफ़े कुदूम एक मुकाम है मदीना से 7 मील पर, वहाँ पहुँचे तो ग़ुलामों को पाया और ग़ुलामों ने मेरे खामन को मार डाला। चुनाचे मैंने रसूलुल्लाह से दरियाफ़्त किया कि क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, यानी सफ़र में थी और अब क्या वापस घर में चली जाऊँ इद्दत गुजारने के लिए, क्योंकि मेरा खामन मेरे लिए कोई मकान या खर्च वगैरह छोड़कर नहीं मरा। हज़रत फरिया कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया चली जाओ। हज़रत फरिया कहती हैं मैं वहाँ से निकली, अभी मस्जिद या हुजरे ही में थी तो आपने मुझे बुलाया या किसी को बुलाने का हुक्म दिया और मुझे बुलाया गया। आपने इरशाद फरमाया तुमने क्या कहा था। मैंने सारी बात दोबारा बयान की जो मैंने अपने शौहर के मुतल्लिक कही थी। हज़रत फरिया कहती हैं तब रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने घर में ठहरी रहो हत्ता कि इद्दत पूरी हो जाए। चुनाचे मैंने इस घर में 4 माह 10 दिन पूरे किए। हज़रत फरिया कहती हैं कि जब उस्मान बिन अफ़ान ने मेरे पास पैगाम भेजा और मसला दरियाफ़्त किया तो मैंने इन्हें यही बताया और उन्होंने इसके मुताबिक फ़ैसला किया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। इस रिवायत से पता चलता है कि शौहर की वफ़ात के बाद इद्दत गुजारने का मसला है जो इस वक्त मौजू नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कोई बात कहते थे और बाद में जब आपने उसे बुला के सुना क्या कहा था, जब बात गौर से सुनी और उसके अंदर यानी हुक्म दूसरा था, तो आपने जो बात पहले कही थी उससे बात को बदल दिया। और इस तरह के और भी दलाइल मिलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम थे, नाबीना सहाबी थे, अल्लाह के नबी से कहने लगे कि बाज़ दफ़ा रात का वक्त होता है या बारिश होती है, कोई मेरे साथ मस्जिद में आने वाला नहीं होता तो क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ। लेकिन नाबीना थे, बूढ़े थे, अकेले थे, कहा मैं पढ़ सकता, आपने कहा हाँ पढ़ सकते हो। वो जाने लगे, फिर आवाज़ दी आपने, कहा ये बताओ तुम्हारा घर कितनी दूर है, क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज़ पहुँचती है, कहा वो तो पहुँचती है, कहा फिर नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए कि सुन्नत और हदीस और कुरान ये कोई बातें छोटी नहीं है, ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की ज़ुबान की बातें हैं, इसलिए इनकी अहमियत हम सब के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।